परमेश्वर के सामने अपने मन को नया करें। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। रोमियो अध्याय 12 वचन 1। यह उचित सेवा क्या है, जिसका अनुवाद न्यू इंटरनेशनल वर्जन में आत्मिक सेवा के कार्य के रूप में किया गया है, जिसे हमें परमेश्वर को देना चाहिए। परमेश्वर को उचित सेवा देने का अर्थ है अपने शरीर को उसके धर्मी कार्य करने के लिए समर्पित करना। चूंकि हम बचाए गए हैं, इसलिए हमें अपने शरीरों को अर्पण करने और धर्मी सुसमाचार के प्रसार के लिए परमेश्वर के स्वीकार्य होने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर को जो उचित सेवा देनी चाहिए वह है यह है कि हम अपने शरीरों को पवित्रता में अलग करके उन्हें सौंपना चाहिए। अध्याय 12 में पौलुस इस बारे में बात करता है कि हमारी आत्मिक सेवा क्या है। यह इस संसार के अनुरूप नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे मनों के नवीनीकरण के रूपांतरित होना है, ताकि हम यह साबित कर सके कि परमेश्वर की अच्छी, प्रसन्न और सिद्ध इच्छा क्या है। उचित सेवा यह है कि हम अपना सारा शरीर और हृदय परमेश्वर को समर्पित कर दे। तो फिर धर्मी लोग परमेश्वर के सामने ऐसा जीवन कैसे जी सकते हैं? पौलुस कहता है कि हमें इस दुनिया के अनुरूप नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे मन के नवीनीकरण से बदल जाना चाहिए और हमें अपने शरीर को परमेश्वर के धार्मिक कार्यों के लिए समर्पित करना चाहिए। अपने हृदय और शरीर को अर्पण करते हुए परमेश्वर की धार्मिकता पर विश्वास करना भी उचित सेवा है। यह भाग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें बताता है कि हमें इस दुनिया के अनुरूप नहीं होना है। इसके बजाय हमें परमेश्वर के कार्यों की सेवा करनी चाहिए और अपने मन के नवीनीकरण के द्वारा रूपांतरित होना चाहिए। हम पहले अपने हृदय को नवीनीकृत कर किए बिना आत्मिक आराधना नहीं दे सकते। यदि धर्मी जन परमेश्वर की धार्मिकता पर विश्वास करना बंद कर देते हैं, तो वे भी अपने शरीर या हृदय परमेश्वर को नहीं दे सकते। हम इस पीढ़ी से प्रभावित हो सकते हैं, जैसा कि पौलुस की पीढ़ी में हुआ था, क्योंकि हम इस पीढ़ी के बहते प्रवाह के बीच में रहते हैं। यदि हम परमेश्वर की धार्मिकता में विश्वास नहीं करते हैं, तो हम अनिवार्य रूप से इस युग की धारा का अनुसरण कर रहे हैं। यहां तक कि धर्मी लोग भी जो परमेश्वर की धार्मिकता में विश्वास करते हैं, वे पूरी तरह से धर्म निरपेक्ष प्रवाह से प्रभावित होने से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि वे अपना जीवन सांसारिक लोगों के साथ जीते हैं। यही कारण है कि बाइबल हमें इस दुनिया के अनुरूप नहीं होने के लिए कहती है। तो फिर धर्मी कैसे इस संसार के संपर्क में रहते हुए अपने पूरे हृदय और शरीर के साथ परमेश्वर को उचित आराधना, एक पवित्र बलिदान चढ़ा सकते हैं? यह केवल पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करने के द्वारा ही संभव है, जो हमारे मनों को निरंतर नवीनीकृत करता है। धर्मी लोग जब अपने मन को नवीनीकृत करते हैं और परमेश्वर की धार्मिकता से परिवर्तित होते हैं, तब वे परमेश्वर की अच्छी और सिद्ध इच्छा को जान सकते हैं और उनका पालन कर सकते हैं। पौलुस सांसारिक मामलों की अपनी अज्ञानता के कारण ऐसे नहीं कह रहा था, ना ही वह विश्वासियों को उनकी परिस्थितियों और क्षमताओं से अनजान रहते हुए चलो अच्छे बने कहकर धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं। पौलुस हमें परमेश्वर की सेवा करने के लिए अपने हृदय को नवीनीकृत करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता है कि विश्वासियों को भी इस दुनिया के तरीके से दूर किया जा सकता है। नया जन्म प्राप्त किया हो या ना हो, भौतिक शरीर एक दूसरे से बहुत अलग नहीं है, लेकिन जो नया जन्म प्राप्त करते हैं और जो नहीं करते हैं, उनके बीच एक बड़ा अंतर है। यह परमेश्वर की धार्मिकता में विश्वास है। केवल धर्मी ही पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते हुए अपने मन को निरंतर नवीनीकृत करके प्रभु का अनुसरण कर सकते हैं। तो फिर कौन सी चीज हमारे हृदय को नवीनीकृत कर सकती है? सुसमाचार के वचन में विश्वास, जो पाप से हमारे पूर्ण उद्धार की घोषणा करता है, वही हमारे हृदयों को नवीनीकृत करता है। प्रभु ने उन सभी पापों को क्षमा कर दिया है जो हमने अपनी कमजोरियों और शरीर की दुर्बलताओं में अपने शरीर और मन से किए हैं। धर्मी लोगों के मन को नवीनीकृत किया जा सकता है, क्योंकि हमारे प्रभु ने अपने बपतिस्मा और क्रूस पर अपने लहू के साथ जगत के सभी पापों को क्षमा कर दिया है। दूसरे शब्दों में, हमारे मनों का नवीनीकरण किया गया है क्योंकि हम परमेश्वर की धार्मिकता में विश्वास करते हैं। अब हमें इस बात की सही समझ होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के सामने क्या करते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि उसकी सिद्ध इच्छा क्या है, वह हमसे क्या चाहता है, उसने हमें कौन से मिशन दिए हैं, और नया जन्म पाया हुआ धर्मी जन को क्या करना चाहिए। हमें इन क्षेत्रों में अपने हृदय को नवीनीकृत करना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए। परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपने शरीर और मन को उसके लिए पवित्र बलिदान के रूप में समर्पित करते हुए सौंप दें। जब हम अपने मन को नवीनीकृत करते हैं तो हम स्वयं को उसके लिए बलिदान के रूप में दे देते हैं। हमारे मन को नवीनीकृत करने से यह विश्वास होता है कि परमेश्वर ने हमारे सभी पापों को दूर कर दिया है। जिन्होंने नया जन्म प्राप्त किया है और जिन्होंने नहीं किया उनके बीच अंतर होता है। केवल धर्मी ही परमेश्वर की धार्मिकता में विश्वास करके अपने मन को नवीनीकृत कर सकते हैं। हम धर्मी अपने हृदयों को शुद्ध करके और नवीनीकृत होकर देह की सांसारिक अभिलाषाओं का इनकार करके हमेशा विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले कार्य कर सकते हैं। धर्मी पापियों से अलग है क्योंकि वे अपने दिलों को नवीनीकृत कर सकते हैं और हमेशा सेवा कर सकते हैं और प्रभु के साथ चल सकते हैं। आपको अपने हृदय को विश्वास से नवीनीकृत करना चाहिए। टीवी पर कई सेलिब्रिटीज हैं। इस दुनिया के लोग इन सेलिब्रिटी के स्टाइल और फैशन की नकल करने की कोशिश में लगे हैं। हम टीवी देखकर आसानी से नए दौर को जान सकते हैं। हम रिमोट कंट्रोल से दुनिया को खोल सकते हैं। क्या आपका जीवन इस संसार के अनुरूप नहीं है? मुझे लगता है कि यह दुनिया तेजी से बदल रही है। यद्यपि हम अभी पैसे के साथ में लेकर चलते हैं, हम अंत में इलेक्ट्रॉनिक धन और इलेक्ट्रॉनिक कार्ड ले जाएंगे। यदि इन इलेक्ट्रॉनिक कार्डों को खोना एक उपद्रव बन जाता है तो हमें बेहतर सुविधा के लिए हमारे हाथों या माथे में बार कोड प्राप्त करने के लिए कहा जाएगा। मुझे यह भी लगता है कि उस समय कई प्राकृतिक आपदाएं होंगी। आइए हम ऐसे समय आने से पहले अपने दिमाग को नवीनीकृत करने और परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने में अपना मन लगाए ताकि हम धर्मी इस दुनिया के अनुरूप न हो। मैं हर जागृत अवस्था में परमेश्वर की सेवा करने के बारे में सोचता हूं। मैं अब उस सुसमाचार को परिश्रम से फैलाना चाहता हूं जिसमें परमेश्वर धार्मिकता समाई है, क्योंकि जब हमारे हाथों और माथे पर बारकोड डालने का समय आएगा तो परमेश्वर के वचन का प्रसार करना संभव नहीं होगा। मैं परमेश्वर की इच्छा का पालन करने के लिए अथाह प्रयत्न कर रहा हूं। शायद मैं तभी आराम कर पाऊंगा जब वह दिन आएगा जब मैं काम नहीं कर पाऊंगा। वह क्षण आने पर मैं अपनी सारी संपत्ति जरूरतमंदों को दे दूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं केवल परमेश्वर की इच्छा का पालन कर सकता हूं। दुनिया के अलग और उसके अनुरूप नहीं हूं। रोम में बहुत से धर्मी जो पौलुस द्वारा प्रचारित सुसमाचार द्वारा बचाए गए थे बीतते समय के साथ दुनिया के अनुरूप हो गए और हमारे प्रभु से दूर चले गए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम उनके पद चिन्हों पर न चले। जब रोम के विश्वासी संसार के अनुरूप हो रहे थे तब पौलुस ने इस भाग को चिंता के कारण लिखा। आपके शरीर इस दुनिया के अनुरूप है, लेकिन वह बहुमूल्य चीज है जो आप कर सकते हैं। अपने दिमाग को नवीनीकृत करें। क्या प्रभु ने आपके सारे पापों से आपको नहीं छुड़ाया है? परमेश्वर के धर्मी सुसमाचार को याद रखें और सोचें कि उसे क्या भाता है। अपने दिमाग को नवीनीकृत करें और शारीरिक रूप से नहीं लेकिन आत्मिक रूप से विचार करके संपूर्ण और स्वीकार्य कार्य करें। यह वही है जिसके बारे में पौलुस ने रोम के विश्वासियों को और साथ ही आज हमें भी चिताया है। हालांकि हम बाहरी रूप से इस दुनिया के अनुरूप नहीं होने का दिखावा करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम जगत के सदृश हैं। फिर भी हम अभी भी अपने मन को नवीनीकृत करके प्रभु की सेवा कर सकते हैं। हालांकि हमारी कमजोरी में हमें इस दुनिया के अनुरूप नहीं होना मुश्किल लगता है, फिर भी हम मानते हैं कि हमारे परमेश्वर ने हमारे सभी पापों को परमेश्वर की धार्मिकता से दूर कर दिया है। इस तरह हम हमेशा परमेश्वर की धार्मिकता में अपने विश्वास के साथ उसके धार्मिक कार्यों की सेवा कर सकते हैं। हम उस पर विश्वास करके परमेश्वर की इच्छा और सिद्ध इच्छा का पूरी तरह से पालन कर सकते हैं। हमें हर पल अपने दिमाग को नवीनीकृत करना चाहिए, क्योंकि धर्मी जो इस दुनिया के लिए मर चुके हैं सांसारिक लोगों की तुलना में अधिक शुद्ध है। उन्हें धर्म निरपेक्ष लोगों की तुलना में गलत विचारों, दिमागों और शरीरों में पतित होने का अधिक जोखिम है। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर की धार्मिकता में अपने विश्वास के साथ अपने दिलों की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि मसीह ने हमारे सभी पापों को उठा लिया है, इसलिए हमें केवल विश्वास में दृढ़ रहने की आवश्यकता है और इस तथ्य के प्रति आश्वस्त होना चाहिए कि हमारा विश्वास सिद्ध हो गया है। क्या आप विश्वास करते हैं कि हमारे परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता से आपके सभी पापों को दूर कर दिया है? यदि आप विश्वास करते हैं तो आप अपने अतीत की सभी अधर्म की परवाह किए बिना विश्वास से हमारे परमेश्वर के कार्य कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने आपके पापों के सभी न्याय और दंड को आपसे दूर कर दिया है। हमें पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करके अपने मन को नवीनीकृत करना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम इस अंतिम युग में पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करके अपने मन को नवीनीकृत नहीं करते हैं तो हम सभी अंत में कलीसिया को छोड़ देंगे और मर जाएंगे। निरंतर नवीनीकरण के विश्वास का जीवन जीना साइकिल पर सवार होकर ढलान चढ़ने के समान है। मन का नवीनीकरण न करना चढ़ाई के रास्ते में रुकने और पैडल पर दबाव न डालने के समान है। यदि आप पैडल नहीं दबाते हैं तो आप न केवल रुकेंगे बल्कि आप वास्तव में पीछे खिसकेंगे और नीचे की ओर दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। यही सिद्धांत परमेश्वर की धार्मिकता में हमारे विश्वास पर भी लागू होता है। हम साइकिल पर चढ़ाई चढ़ रहे हैं, केवल हमारी ताकत और इच्छा शक्ति से चोटी पर पहुंचना मुश्किल है। हमें परमेश्वर की धार्मिकता को थामे रहने की जरूरत है क्योंकि हम अभी भी अपनी देह में हैं। एक क्षण भी बिना दैहिक विचारों के नहीं गुजरता। जब भी हमारी सामर्थ खत्म हो जाती है तो देह में हमारी इच्छा आसानी से हार मान लेने के लिए उपयुक्त होती है। मैं यह नहीं कह सकता, मैं इसके अनुकूल नहीं हो सकता, मेरी इच्छा शक्ति कितनी कमजोर है, लेकिन उस भाई की इच्छा शक्ति वास्तव में प्रबल है। मेरे पास सामर्थ्य नहीं है लेकिन उस बहन के पास बहुत सामर्थ्य है। मैं उन भाइयों और बहनों की तुलना में बहुत कमजोर हूं। वे परमेश्वर की सेवा करने के लिए उपयुक्त प्रतीत होते हैं लेकिन मैं नहीं। जो कोई भी परमेश्वर की धार्मिकता पर विश्वास नहीं करता और उसे थामे नहीं रहता वह अंत में पैडल पर दबाव डालना बंद कर देगा और नीचे की ओर दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। क्या यह बात गिने चुने लोगों पर ही लागू होती है? बिल्कुल नहीं, यह सभी पर लागू होता है। एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित साइकिल चलाना चालक आसानी से चढ़ाई कर सकता है लेकिन एक कमजोर व्यक्ति के लिए ऐसा करना कठिन होगा। हालांकि धर्मी लोगों के लिए समस्या उनकी शारीरिक सामर्थ्य से नहीं, यह पानी और आत्मा के सुसमाचार में उनके विश्वास को बनाए रखने में है। केवल शारीरिक सामर्थ्य से आत्मिक शिखर तक पहुंचना असंभव है। शारीरिक रूप से कमजोर या मजबूत होने का इससे कोई लेना देना नहीं है। याद रखें कि कोई भी व्यक्ति विश्वास का जीवन सिर्फ इसलिए नहीं जी सकता क्योंकि उसके पास दृढ़ इच्छा शक्ति है। आपको अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। केवल परमेश्वर की धार्मिकता को थामे रहिए। यदि हम परमेश्वर की धार्मिकता में विश्वास के साथ अपने मनों को निरंतर नवीनीकृत करते हैं तो प्रभु हमें खींच लेंगे। उद्धार का सुसमाचार जो हमने प्राप्त किया वह हमारे हृदयों में बोया जाएगा और यदि हम प्रतिदिन अपने हृदयों की जांच करें तो प्रभु हमें थाम लेंगे। हमें परमेश्वर की धार्मिकता में विश्वास करके और परमेश्वर का कार्य करने के द्वारा अपने अशुद्ध मन को शुद्ध करना चाहिए। मैं अपने परमेश्वर को उनकी कृपा के लिए धन्यवाद देता हूं जिसने हमें अपने दिमाग को नवीनीकृत करके उसकी सेवा करने की अनुमति दी है। हमारे मन को नवीनीकृत करने के द्वारा हमारे परमेश्वर ने हमें अपने विश्वास के साथ हमेशा उसके सामने दौड़ने की अनुमति दी है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझमें कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। पौलुस रोमियो अध्याय 7:18 में कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझमें अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझमें है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। पौलुस अच्छी तरह से जानता था कि उसकी देह कोई अच्छी वस्तु नहीं थी। देह में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, यह नियम है। पौलुस ने स्वीकार किया कि उसके शरीर में कुछ भी अच्छा वास नहीं करता। वह जानता था कि वह व्यवस्था से कितना भी प्यार करता हो और उसके अनुसार जीने की कितनी भी कोशिश कर ले वह इसे नहीं करता। हृदय स्वयं को प्रभु का अनुसरण करने के लिए नवीनीकृत करना चाहता है लेकिन शरीर निरंतर आत्मिक युद्ध क्षेत्रों से पीछे हटना चाहता है। इसलिए पौलुस रोमियो अध्याय 7:21-24 में विलाप करता है, इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? पौलुस ने अपने शरीर को कैसे परिभाषित किया? उसने इसे मृत्यु के शरीर के रूप में परिभाषित किया। आपके शरीर के बारे में क्या? क्या यह भी मृत्यु का शरीर नहीं है? निश्चित रूप से यह है। शरीर आप ही मृत्यु का शरीर है। यह केवल पाप करना चाहता है और जहां पापों की अधिकता है वहां जाना चाहता है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? और इसीलिए पौलुस कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। रोमियो अध्याय 7:25। पौलुस बताता है कि दो प्रकार की व्यवस्था है। पहली देह की व्यवस्था, यह केवल देह की इच्छाओं का पालन करना चाहता है और देह के उन विचारों में वास करता है जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले के बिल्कुल विपरीत है। दूसरा जीवन की आत्मा की व्यवस्था है। आत्मा की व्यवस्था हमें उस सही मार्ग पर ले जाना चाहता है जिस पर परमेश्वर चाहता है कि हम उसका अनुसरण करें। आत्मा की व्यवस्था वह चाहती है जो शरीर की व्यवस्था के विपरीत है। हम मसीही दोनों के बीच में फंस गए हैं, यह तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां जाना है। हम कभी कभी उसका अनुसरण करते रहते हैं जो हमारा शरीर चाहता है, लेकिन जब हम अपने मन को नवीनीकृत करते हैं तब हम आत्मा द्वारा इच्छित परमेश्वर के कार्य का अनुसरण करते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? अर्थात अपने शरीर को परमेश्वर के बलिदान के रूप में अर्पित करना और फिर तुरंत देह के कार्य को करना। यह इसलिए है क्योंकि हम सभी के पास देह हैं। इस प्रकार हमें हमेशा पवित्र आत्मा के द्वारा अपने मनों को नवीनीकृत करना चाहिए। हालांकि हम बचाए गए हैं, फिर भी हम आसानी से इस दुनिया के अनुरूप हो जाते हैं क्योंकि हम अभी भी देह में हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई अपना जीवन दुनिया के अनुरूप जीता है। हम आसानी से उनसे प्रभावित होते हैं। ऐसे में केवल एक ही तरीका है जिससे हम परमेश्वर का अनुसरण कर सकते हैं और वह है अपने मन को नवीनीकृत करना। हम हमेशा अपने मन को विश्वास में नवीनीकृत करके जी सकते हैं। इस तरह जब तक प्रभु फिर से नहीं आता तब तक हम हमेशा अपने प्रभु का अनुसरण कर सकते हैं। केवल अपने शरीर को देखते हुए हम में से कोई भी प्रभु के धर्मी कार्यों का अनुसरण नहीं कर सकता है और हम सभी विनाश के लिए अभिषिक्त हैं। लेकिन हम अपने दिमाग को नवीनीकृत करके और अपने पूरे दिल से उसकी धार्मिकता को धारण करके प्रभु का अनुसरण कर सकते हैं। हमें अपने मन को नवीनीकृत करना चाहिए और उसका अनुसरण करना चाहिए। इसलिए रोमियो अध्याय 8:2 में पौलुस ने कहा, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सके उसे मसीह ने परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा किया। जैसा कि रोमियो अध्याय 8:3 में कहा गया है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा और उनके शरीर में हमारे पापों का दंड दिया। कि उसने शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी का अर्थ है कि हमारे सभी पापों को दूर कर दिया गया और इस प्रकार हम पाप रहित हो गए। परमेश्वर की धार्मिकता में विश्वास करने के द्वारा हम अपने पापों से मुक्त हुए। व्यवस्था के न्याय की मांगों को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे सभी पापों को अपने बपतिस्मा और क्रूस पर लहू के माध्यम से दूर करने और हमें दुनिया के सभी पापों से बचाने के लिए भेजा। इस उद्धार को प्राप्त करने के बाद दो प्रकार के लोग प्रकट होते हैं, वे जो शरीर के अनुसार जीते हैं और शरीर की बातों पर अपना मन लगाते हैं, और वे जो आत्मा के अनुसार जीते हैं और आत्मा की बातों पर अपना मन लगाते हैं। आपको समझना चाहिए कि शरीर के विचार आपको मृत्यु की ओर ले जाते हैं, लेकिन आत्मा के विचार आपको जीवन की और शांति की ओर ले जाते हैं। दैहिक मन परमेश्वर के खिलाफ द्वेष कर रहा है, क्योंकि हम न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकते हैं। रोमियो अध्याय 8:7। यहां तक कि नया जन्म पाया हुआ धर्मी जन भी यदि अपने मन का नवीनीकरण नहीं करते तो वे भी शरीर के विचारों में गिरेंगे। यदि हम विश्वास नहीं करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे सभी पापों को दूर कर दिया है और इस कारण हमारे मन को नवीनीकृत नहीं करते हैं, तो हम आसानी से देह के कार्य में पड़ सकते हैं और प्रभु का अनुसरण नहीं कर सकते। इसलिए हमें हमेशा अपने मन को नवीनीकृत करना चाहिए। पौलुस ने कहा कि हम नया जन्म पाए हुए धर्मी या तो शरीर के विचारों का अनुसरण करके शरीर में गिर सकते हैं या अपने मनों को नवीनीकृत करके आत्मा के विचारों का अनुसरण कर सकते हैं। हम दोनों के बीच झूल रहे हैं, लेकिन पौलुस फिर भी कहता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं, परंतु तुम शरीर में नहीं परंतु आत्मा में हो, यदि सचमुच परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अब यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वह उसका नहीं। रोमियो अध्याय 8:9। हम परमेश्वर के आत्मिक लोग हैं। दूसरे शब्दों में हम परमेश्वर के लोग हैं, भले ही हम दुनिया की वासनाओं का अनुसरण करते हैं और अपनी कमजोरी में उसके अनुरूप होते हैं, फिर भी हम नया जन्म पाए हुए लोग हैं। जब हम शरीर की बातों पर मन लगाते हैं तो हम शरीर में गिर जाते हैं, परंतु क्योंकि पवित्र आत्मा हम में वास करता है इसलिए हम मसीह के लोग हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो हम धर्मी बने हैं, परमेश्वर के लोग बने हैं। पौलुस ने कहा हमारे शरीर मसीह के द्वारा मर चुके हैं, और उसने आगे कहा और यदि मसीह तुम में है तो देह के पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है, रोमियो अध्याय 8:10। हमारे आत्मिक विचार जागरूक होने चाहिए। हम अभी भी कमजोर हैं और हमारी मृत्यु के समय तक हमारे शरीर आसानी से भटक जाएंगे, लेकिन हमारे दिमाग और विचारों को हमेशा परमेश्वर की धार्मिकता में विश्वास करने के द्वारा नवीनीकृत किया जा सकता। जब भी हमें अपने अंदर पाप की इच्छा का एहसास होता है तो आइए हम अपनी आंखें परमेश्वर की धार्मिकता पर लगाएं। तब हम जान सकते हैं कि प्रभु की धार्मिकता ने हमारे सभी पापों को दूर कर दिया है। परमेश्वर की धार्मिकता को देखो और विश्वास करो। हमारे सभी पापों को दूर करने और परमेश्वर के कार्यों के बारे में सोचने के लिए उसे धन्यवाद दें। इस बारे में सोचें कि परमेश्वर की सिद्ध और उसे प्रसन्न करने वाली इच्छा क्या है। तब आपका मन हमेशा के लिए नया हो जाएगा। हमें विश्वास के द्वारा अपने मनों को नवीनीकृत करना चाहिए और अपने मन को उन बातों में लगाना चाहिए जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है। धर्मी जन को ऐसे ही जीना चाहिए। केवल ऐसा करने से ही हम प्रभु की वापसी तक उनका अनुसरण कर सकते हैं। मुझे पता है कि हम सभी अपने दैनिक जीवन से थक चुके हैं। काम करना कठिन है और कलीसिया में आना कठिन है। सभी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कभी कभी मैं यीशु से ईर्ष्या भी करता हूं जब उसने अपनी मृत्यु के समय कहा पूरा हुआ। मुझे विश्वास है कि हम भी पूरा हुआ ऐसा कह सकेंगे और इन सभी कठिनाइयों से मुक्त हो पाएंगे। हमारे प्रभु का दूसरा आगमन निकट है। तब तक आइए हम इस दुनिया के अनुरूप हुए बिना अपने मन को नवीनीकृत करें, क्योंकि प्रभु का अनुसरण करने के लिए हमारे दिलों को परमेश्वर की धार्मिकता को थामे रहने की जरूरत है। हमारे दिमागों को लगातार नवीनीकृत किया जाना चाहिए। इस तरह हम प्रभु की वापसी तक उनका अनुसरण कर सकते हैं। समय निकट है। मैंने हाल ही में एक अखबार के लेख को पढ़ा जिसमें बताया गया था कि अंटार्कटिका ओजोन छिद्र महाद्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका के आकार से 3 गुना बड़ा है। मैंने मिसाइल रक्षा पहल के बारे में एक और लेख भी पढ़ा। इस प्रणाली का उद्देश्य मध्य हवा में बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराना है और प्रारंभिक प्रयोग सफल रहे हैं। इन घटनाओं की निहितार्थ स्पष्ट है। जैसे जैसे सैनिक शक्ति की विनाशकारी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, पर्यावरण तेजी से नष्ट हो जाएगा। यदि कोई देश अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाता है तो क्या उसके प्रतिद्वंदी भी इस वृद्धि की बराबरी करके उनके अपनी सैन्य शक्ति को नहीं बढ़ाएंगे? जब एक देश अपनी शक्ति में बढ़ोतरी करता है तब दुनिया के सभी राष्ट्र सिर्फ बेकार खड़े रहकर उसे देखेंगे नहीं। अगर इन महान शक्तियों के बीच युद्ध छिड़ जाए तो क्या होगा? जब कुछ राष्ट्रों ने परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश की तो महान शक्तियों ने उन्हें परमाणु क्षमता हासिल करने से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बता दे कि इस तरह के विनाशक प्रयास विफल हो गए थे। और यह कि देश सामूहिक विनाश के हथियार हासिल करने में सक्षम था और उनका इस्तेमाल करने की धमकी दी थी। फिर बाकी दुनिया ने निश्चित रूप से स्थिति से निपटने के लिए नए हथियार विकसित करने की कोशिश की। इस तरह के नए हथियार इस दुनिया को परमाणु हथियारों से कहीं अधिक ताकत से तबाह कर देंगे। युद्ध अब पहले की तरह बंदूकों से नहीं लड़ा जाता। मनुष्य को मारने से कुछ नहीं होगा, पूरे शहर या पूरे देश का एक पल में मिटा दिया जाएंगे। परमाणु युद्ध स्थानीय नहीं होगा लेकिन विश्व युद्ध की ओर ले जाएगा। पहले से ही इस तरह के युद्ध से तबाह प्राकृतिक आपदाओं के रूप में और भी अधिक विनाश दुनिया का इंतजार करेगा। ओजोन परत अधिक तेजी से नष्ट हो जाएगी और वनों की कटाई से आग की लहरें और तूफान लगातार उठेंगे। तब मसीह विरोधी बड़ी शक्ति के साथ प्रकट होंगे और इस संसार पर विजय प्राप्त करेंगे। आप कह सकेंगे कि मैं इस परिदृश्य को चरम पर ले जा रहा हूं, लेकिन मानव स्वभाव अपने मूल सिद्धांतों में बुरा है। राष्ट्र सेनाओं का निर्माण करते हैं और नए हथियार विकसित करते हैं जिनका उपयोग कभी भी अच्छे उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। परमाणु हथियारों का मिलन सामूहिक विनाश के हथियारों की एक ही नस्ल से ही किया जाता है। देश एक दूसरे पर वार करेंगे ताकि वे खुद बच पाए। अन्य राष्ट्र विश्व प्रभुत्व की तलाश करने वाले किसी एक देश के खिलाफ संतुलन बनाने का प्रयास करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इरादे क्या होंगे, एक बार किए गए परमाणु हथियारों और सैन्य क्षमताओं का उपयोग केवल बुरे उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। बहुत पहले पौलुस ने रोम के विश्वासियों से कहा था कि वे इस संसार के अनुरूप न हो परंतु अपने हृदयों को नया करके प्रभु का अनुसरण करें। यह हमारे लिए वर्तमान युग में जीवन जी रहे हैं उनके लिए बहुत उपयुक्त भाग है। इन अंतिम दिनों में हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर की भली मन भावन और सिद्ध इच्छा क्या है, और अपने विश्वास के साथ प्रभु का अनुसरण करें। हालांकि हमारे पास बहुत सी कमियां हैं, हमारे प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सर्वशक्तिमान हम में पवित्र आत्मा के रूप में वास करता है। यद्यपि हमारे भौतिक शरीर कमजोर हो सकते हैं, हमें पवित्र आत्मा बहुत मजबूत है। यह पवित्र आत्मा वचन में विश्वास के द्वारा हमारे मनों को नवीनीकृत करता है, ताकि हम प्रभु का अनुसरण करने में सक्षम हो सके। आइए हम सभी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पर निर्भर हो, अपने मन को नवीनीकृत करें और प्रभु की सेवा करें। यदि हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, उसी समय प्रभु हमारे पास लौटते हैं, तो आइए हम उसके साथ चले। मसीह की वापसी के इस दिन तक हम परमेश्वर की धार्मिकता को फैलाने के लिए जीवित रहेंगे। परमेश्वर की धार्मिकता में विश्वास करके अपने मन को नवीनीकृत करें।